दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी स्वार्थ। राजनगर के सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मची है। डॉक्टर एक 6 महीने की बच्ची को बचाने में जी जान से लगे हैं। इमरजेंसी के बाहर बच्ची की माँ सरिता, पिता राकेश और बच्ची की दादी बेचैन बैठे हैं। तूने बच्ची का कभी ठीक से ख्याल नहीं रखा सरिता।
तो फिर किसने रखा माँ जी? आपने तो कभी हाथ तक नहीं बटाया मेरा।
माँ सरिता बस करो, ये कोई वक्त है, तुम दोनों अपना झगड़ा शुरू मत करो।
अच्छा, तुम और तुम्हारी माता जी कभी वक्त देख कर झगड़ा करते हो राकेश?
लड़ना बंद करो सरिता, हमारी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। आप जब तक उसे हमारे पास लाए उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसी दिन राजनगर के एक दूसरे हॉस्पिटल लाइफ केयर के ओटी में 22 साल की महिला सुजाता का क्रिटिकल ऑपरेशन चल रहा था। ओटी के बाहर सुजाता के माता पिता, सुजाता के ससुर और पति जगदीश गोद में 3 साल की बेटी को लिए हुए बेचैनी से इधर उधर टहल रहे हैं।
बेटा जगदीश, तुम चिंता मत करो, सुजाता को कुछ नहीं होगा। प्रेरणा बेटा, तुम मेरे पास आओ, चलो मैं तुम्हें पसंद की चॉकलेट दिलवाता हूँ।
जगदीश के पिता अपनी पोती प्रेरणा को लेकर बाहर चले गए। जगदीश अपने इन-लॉज के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ओटी का दरवाजा खुलता है और सर्जन बाहर आते हैं। हम इंटरनल ब्लीडिंग को रोक नहीं सके। आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की थी। सरिता ने अपने 4 महीने की बच्ची को खो दिया था। जगदीश वर्मा ने अपनी बीबी सुजाता को खो दिया था और 3 साल की प्रेरणा ने अपनी माँ को। जो गुजर गए उनके जाने के नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। 6 साल बाद क्या हाल है जगदीश? अरे संजय, बस यार आ बैठ। यार प्रेरणा कैसी है? अच्छी है यार, बड़ी हो रही है। अभी भी नाना नानी के साथ है?
हाँ यार, यहाँ तो मैं और पापा कैसे संभालेंगे, सुजाता भाभी को गए 6 साल हो गए। हाँ यार, मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, लगता है जैसे मैके गई है, अभी वापस आ जाएगी।
यार जगदीश, सच्चाई मान ले यार, अपने लिए ना सही प्रेरणा के लिए तो मान ले। यार संजय, अब अपना प्रवचन मत शुरू कर दे भाई, शादी कर ले, सेटल हो जा, प्रेरणा के लिए माँ लेकर आ, वही तेरा घिसा पीटा रिकॉर्ड। हाँ यार, वही रिकॉर्ड बजा रहा हूँ। नहीं यार, अरे सुन सुन, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनकी एक बेटी है सरिता, तलाकशुदा है, करीब 6 साल पहले उसकी बच्ची गुजर गई थी, एक बार मिल तो ले। देख देख, तेरे परिवार से बिल्कुल मैच करते हैं, फिर से तेरा घर भी बस जाएगा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शाम को वर्मा निवास पर।
जगदीश सही तो कह रहा है संजय, प्रेरणा अब 9 साल की हो गई है। अभय जी और सुनंदा जी की उम्र काफी हो गई है, कब तक ख्याल रखेंगे उस बच्ची का? प्रेरणा को घर लाने का अब समय हो गया है बेटा, किसी दिन काम से वक्त निकाल कर उस फैमिली से मिल लो बेटा। पर पहले एक बार अभय जी और सुनंदा जी के कान में डाल दो, उनसे डिस्कस कर लो बेटा।
1 महीने बाद राजनगर कॉफी हाउस में।
अच्छा, क्या आप शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि प्रेरणा को एक नई माँ मिल जाए?
सरिता, मेरा घर अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि कोई आके उसे पूरा कर सके। हाँ, प्रेरणा को माँ की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि उसे एक नई माँ मिले। जब से मेरी वाइफ गई है, तब से वो अपने नाना नानी के पास है। मैं बहुत मिस करता हूँ उसे। वो भी बहुत बहुत मिस करती है मुझे।
क्या आप चाहेंगे कि हमारे भी अपने बच्चे हों?
जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। इस मुलाकात के कुछ महीने बाद ही जगदीश और सरिता शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
वाह सरिता बेटा, हम इतने दिनों बाद बिना जला इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं।
पापा, कल हम प्रेरणा को घर वापस ला रहे हैं।
हाँ बाबूजी, फिर उसका एडमिशन ना हम यहाँ पर किसी अच्छे स्कूल में करवा देंगे।
वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो भाई, एक बार फिर से ये मकान घर जैसे लगने लगा है।
जगदीश और सरिता प्रेरणा को नाना नानी के यहाँ से वापस घर लेकर आते हैं। सच में वर्मा निवास में खुशियाँ बरस रही थी। 2 महीने बाद।
मम्मी, मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता।
लेकिन अभी यही सब्जी बनी है, खा लो।
मैंने बताया था ना आपको, मुझे बैगन पसंद नहीं है।
बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई आया नहीं हूँ। मैं भी भूल जाती हूँ कभी। अब यही सब्जी खा लो।
प्रेरणा मन मारकर जैसे तैसे खाना खत्म कर अपने दादा के कमरे में चली जाती है। अब उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने दादा के साथ ही बीतता। अगले दिन प्रेरणा सरिता के साथ ट्यूशन से लौटते हुए,
अभिलाषा मैम का क्लास 5 बजे खत्म हो जाता है।
मालूम है मुझे,
रोज आधा घंटा वेट करना पड़ता है निकलने के लिए।
अरे तो क्या हो गया, तब तक कुछ पढ़ लिया करो। अरे मुझे और भी काम होते हैं घर में, आते आते देर हो ही जाती है
रोज।
प्रेरणा, ऐसे जवाब देना ठीक नहीं है। और फिर अगर आधा घंटा पढ़ लोगी तो क्या तुम्हारी जान निकल जाएगी?
मेरे लिए तो कोई बात नहीं मम्मी, पर अभिलाषा मैम के घर में काम होता है और स्टूडेंट उनके घर में ट्यूशन के बाद वेट करे।
प्रेरणा, फालतू की बातें मत बनाओ। ऐसा कुछ होता तो मुझसे कहती ना।
वो मुझे बोलती है।
प्रेरणा आखिर अपने पिता के घर आ गई। चाहे सौतेली ही सही, पर उसे एक माँ मिल गई और एक दादा भी। जो दादा कम, दोस्त ज्यादा थे। 4 महीने बाद अपनी नाना नानी का घर छोड़े हुए प्रेरणा को 4 महीने ही हुए थे कि अचानक एक हादसे ने वर्मा निवास को अपने पंजे में दबोच लिया। शाम के 6 बज रहे हैं। सरिता बाजार से कुछ जरूरी काम निपटाकर वापस पैदल ही घर की तरफ लौट रही है। वर्मा निवास के कंपाउंड गेट के पास पहुंचते ही उसके पैर अचानक ठिठक गए। वो भागती हुई पड़ोसी शिवम सक्सेना का दरवाजा पीटने लगती है।
क्या बात है सरिता जी, क्या हुआ?
शिवम भाई साहब, हमें मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे घर से धुआं निकल रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है।
सरिता जी, आपने गैस पर कुछ रखा तो नहीं था?
नहीं भाई साहब, धुआं तो भाऊजी के कमरे से निकल रहा है।
चाबी तो है ना आपके पास?
जी हाँ है हमारे पास।
आइए देखते हैं।
कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कामत, कांस्टेबल दयाल और एसआई विराट के साथ क्राइम सीन पर मौजूद थे।
सर, मैंने दोनों को चेक किया है, दोनों मर चुके हैं। दयाल, कमरे के हर कोने कोने का फोटो निकलवाओ।
इंस्पेक्टर कामत इतना कहकर दोनों डेड बॉडी को अपनी पैनी निगाह से देखते हुए बोलते हैं, तकिया जला हुआ है, पर मौत की वजह इस हथौड़े से हमला लगता है।
कामत सर, पड़ोसियों का कहना है कि घर की बहू ने कमरे से धुआं निकलते देखा।
उधर बाहर वर्मा निवास के कंपाउंड में एक कार तेजी से आकर एक धक्के में रुकती है। कार से जगदीश उतरकर बदहवास सा कोठी के अंदर भागता है। इधर कोठी के अंदर सरिता अपना बयान कांस्टेबल दयाल को दर्ज करवा रही है। पास में खड़े इंस्पेक्टर कामत सरिता के बयान को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
रेना की ट्यूशन फीस जमा कराने के बाद मैं मार्केट तक गई थी सर।
कहाँ बाबूजी? बाबूजी और प्रेरणा कहाँ है? तभी वहाँ हाँफते हुए बदहवास सा जगदीश पहुँचता है। सरिता के जवाब का इंतजार किए बगैर जगदीश बाबूजी के कमरे की तरफ भागता है। खून से सने बिस्तर पर जले तकिए के पास अपने पिता और अपनी बेटी की लाश देख वो चीख पड़ता है,
प्रेरणा प्रेरणा, पापा पापा, ये क्या हो गया?
पड़ोसी शिवम सक्सेना का बयान एसआई विराट दर्ज कर रहे हैं।
सर सर, हमें कुछ नहीं पता, वो तो सरिता जी मदद मांगने आई थी और हम उनके साथ आ गए, उनके पास चाबी भी थी।
हमें क्राइम सीन पर एक हथौड़ा मिला है, क्या इनके घर में कुछ काम चल रहा है?
हाँ सर, इनका फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में कुछ काम चल रहा।
इधर पुलिस के फोटोग्राफर हर एंगल से फोटो ले रहे हैं। उधर सरिता भी अपने बयान दर्ज कराते हुए आगे बताती है,
जी मैं घर से कोई 4:15 बजे निकली होंगी।
घर में कोई काम चल रहा है?
जी वो फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है।
मजदूर तो कहीं दिख नहीं रहे।
आज तो जा चुके थे 3 बजे तक।
वापस नहीं लौटे?
नहीं, उनकी छुट्टी हो गई थी।
इतनी जल्दी? हमेशा इतनी जल्दी छुट्टी होती है उनकी?
आज तो मैंने ही उनसे बोला था जाने के लिए, क्योंकि बाबूजी को आज के दिन कोई शोर शराबा नहीं चाहिए था।
सिर्फ आज के दिन?
जी हाँ, कोई 2 लोग आए थे उनसे मिलने के लिए।
कौन थे ये दोनों?
मेरे लिए है बेटा, मैं देखता हूँ। अरे सुमित, आओ आओ अंदर आओ। सरिता बेटा, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग है इनके साथ, और बेटा तुम मजदूरों से कह देना कि आज वो छुट्टी कर ले।
जी अच्छा बाबूजी।
हाँ हाँ, एक बात और बेटा, प्रेरणा से कह देना कि मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ।
जी ठीक है बाबूजी। इसके बाद मैंने मजदूरों को पूरी दिहाड़ी देकर जाने को कहा। मैंने जगदीश से पूछकर ही मजदूरों को पूरी दिहाड़ी देकर भेजा था।
आपकी बेटी प्रेरणा कब वापस आई? ठीक उसी वक्त प्रेरणा की डेड बॉडी स्ट्रेचर में डाल एम्बुलेंस स्टाफ बाहर की तरफ जाने लगी। यह देख सरिता बिलख बिलख कर रोने लगी।
आपकी बेटी प्रेरणा कब वापस आई सरिता जी?
जी करीब 3:30 बजे। अरे प्रेरणा आ गई बेटा, देख तेरे लिए मैंने आज वेज बिरयानी बनाई है, चल फटाफट चेंज कर ले, फ्रेश हो जा, और फिर अभिलाषा मैडम के अभी तो जाना है बेटा ट्यूशन के लिए।
नहीं मम्मा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना, तो मैं आज ट्यूशन की छुट्टी कर लूँ मम्मा।
नो बेटा, नो छुट्टी। देखो बेटा, आज मैडम की फीस भी तो देनी है ना।
प्लीज मम्मा, सिर्फ आज की।
अच्छा चलो ठीक है, पर मुझे तो जाना पड़ेगा ना बेटा फीस देने, 1 हफ्ता हो गया ऊपर फीस दिए हुए। अच्छा हाँ सुन, दादू के कमरे में मत जाना, उनकी एक मीटिंग चल रही है, उन्होंने कहा है प्रेरणा को बता देना डिस्टर्ब ना करे, वो फ्री होके तुमसे खुद ही आके मिल लेंगे। और फिर प्रेरणा को खिला पिला के करीब 4:15 बजे मैं निकल गई, और जब 6 बजे वापिस आई तो देखा बाबूजी के कमरे से धुआं निकल रहा है, और फिर अंदर आके देखा तो
इंस्पेक्टर कामत ने एविडेंस बैग जिसमें खून से सना हथौड़ा रखा था सरिता को दिखाते हुए पूछा,
ये हथौड़ा क्या मजदूर इस्तेमाल कर रहे थे?
जी शायद यही था।
देर शाम राजनगर थाने में
दयाल पीएम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि चोट किसी भारी और शार्प चीज से की गई है, यानी जो हथौड़ा हमें क्राइम सीन से मिला है वो मर्डर वेपन है। उस पर दादा और पोती दोनों के खून के अंश मिले हैं। इसका मतलब सर, तकिया सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को फटकाने के लिए जलाया गया है। दयाल, जब अपराध हुआ तो घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, कुलभूषण वर्मा, उनकी पोती प्रेरणा और वो 2 लोग जो उनसे मिलने आए थे। 4 में से 2 लोग मारे गए। जाहिर है हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 वही 2 लोग हैं जो कुलभूषण जी से मिलने आए थे। दयाल, आखिर ये 2 लोग हैं कौन? अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में।
मिस्टर जगदीश, आप ध्यान से सोचकर बताएं कि वो 2 लोग कौन हैं।
सर, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो कौन हो सकते हैं।
उनमें से एक का नाम सुमित, जिसे आपके पिता अच्छी तरह जानते थे।
मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त हैं, सुमित नाम के किसी शख्स को नहीं जानता मैं।
सरिता जी, आपने कभी पहले देखा है इन्हें?
नहीं, उनकी उम्र लगभग 30-35 की होगी। इससे पहले तो वो बाबूजी से मिलने कभी नहीं आए थे।
आपके ससुर के अच्छे जानकार लग रहे थे।
जी, देखकर तो यही लग रहा था, क्योंकि बाबूजी उन्हें सीधे अपने कमरे में ले गए थे।
सरिता जी, कल हम स्केच आर्टिस्ट को बुलवा रहे हैं, क्या आप उनके स्केच बनवा पाएंगी?
जी हाँ, मैंने उनको ठीक से देखा था।
सरिता और जगदीश के जाने के बाद कामत सर, डिटेल्ड पीएम रिपोर्ट परसों तक आ जाएगी, बॉडी हैंडओवर कर सकते हैं क्या? दयाल, सोचने वाली बात यह है कि घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। सर, लगता है वो 2 लोग जो आए थे उनके साथ कुलभूषण जी कुछ समझौता करना चाह रहे थे। दयाल, घर में काम चल रहे हैं, ठेकेदार और मजदूर से पूछताछ करो। हो सकता है जैसा दिख रहा है असलियत में एकदम अलग हो। हथौड़ा ऊपर से लाया गया, फिर दादा और पोती को मारा गया। कामत सर, ठेकेदार और मजदूर उस हथौड़े को पहचान तो रहे हैं, पर उनका कहना है कि काम के बाद वो अपना सारा सामान वहीं ऊपर छोड़कर जाते हैं, और ऐसा वो 1 सप्ताह से कर रहे हैं।
सर, जब मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि ये जगदीश और सरिता की 2री शादी है। इसका मतलब ये कि सरिता प्रेरणा की सौतेली माँ है।
पर पड़ोसियों के हिसाब से सरिता प्रेरणा की सगी माँ से ज्यादा लार प्यार करती थी।
दयाल, कुलभूषण जी ने लास्ट कॉल अपने वकील को किया था, तो दयाल चलते हैं वकील साहब से मिलने। उधर पुलिस स्टेशन से घर को जाते हुए कार में सरिता जगदीश से पूछती है,
देश, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि यह सुमित कौन है?
क्या मतलब है सरिता, मैं क्यों झूठ बोलूंगा?
हर वक्त मैं डरी रहती थी, कहीं कुछ भी गलत हुआ तो सब यही कहेंगे, सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए।
बाकी का पूरा रास्ता खामोशी से कटा, न तो जगदीश ने और न ही सरिता ने कुछ बोला। वकील राजेश कालरा के ऑफिस में।
मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि कुलभूषण जी अचानक वसीयत क्यों बनवाना चाह रहे थे।
क्या वसीयत बनवाना चाह रहे थे?
नमस्ते सरिता जी, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ राजेश जी, बाबूजी अपने कमरे में हैं।
राजेश जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहता हूँ।
ये अचानक आपने वसीयत बनाने का कैसे सोचा?
राजेश जी, जगदीश और सरिता अपने बच्चे करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेरणा के प्रति अनदेखी हो।
पर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है?
अब मैं आपसे क्या बताऊँ राजेश जी, कुछ वजहें हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुलभूषण जी ने बताया तो नहीं, पर मुझे लगा कि कोई तो बात ऐसी वैसी जरूर हुई होगी फैमिली में।
राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जगदीश अपने पिता की हत्या कर सकता है?
इंस्पेक्टर साहब,
आपको तो पता ही है कि शहरों में प्रॉपर्टी के दाम कितने बढ़ रहे हैं, और कुलभूषण जी की प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 5 करोड़ से ऊपर की है। इतने पैसे तो अच्छे अच्छों का दिमाग हिला देता है।
राजेश जी, अभी हम ये पता लगाने में जुटे हैं कि वे दो लोग कौन थे। उनमें से एक सुमित, जो कुलभूषण जी का दोस्त था।
इंस्पेक्टर साहब, मैं पिछले 15 साल से कुलभूषण जी को और उनके सारे दोस्तों को जानता हूँ, पर यह सुमित उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कभी था ही नहीं। मेरा मतलब कि वो किसी सुमित को नहीं जानते थे।
अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, सरिता अपने बच्चा चाहती थी।
तो मिस्टर जगदीश, क्या सरिता प्रेरणा को पसंद नहीं करती थी क्या?
क्या मतलब है सर, वो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थी, भले उसकी अपनी बच्ची नहीं थी वो। देखिए सर, जब से मेरी पहली पत्नी का देहांत हुआ, तब से प्रेरणा अपने नाना नानी के यहाँ रहती है। वो तो 6 साल बाद मेरे पास रहने को आई। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना घुलने मिलने में।
आपको इस बात का पता था कि आपके पिताजी अपनी वसीयत बनवा रहे थे और आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम करना चाहते थे?
जी पता था। उन्हें लगता था कि आगे चलकर जब सरिता के अपने बच्चे होंगे तो वो बदल सकती है और मुझे भी बदल देगी। मैंने उनसे कहा भी था कि चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा।
और सरिता को इसका पता था?
जी हाँ पता था।
जगदीश, मुझे शक है कि ना कोई सुमित है और ना ही उसका कोई दूसरा साथी। मुझे शक है कि इस सब में तुम्हारा और तुम्हारी बीबी सरिता का लेना देना है। ये एक साजिश है। पहले से ही तय था कि मजदूरों को दोपहर में छुट्टी दे दी जाएगी।
आप बकवास कर रहे हैं सर। मेरी बेटी और बाप के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं।
जगदीश, जमीन जायदाद के झगड़े ज्यादातर परिवार वालों के बीच ही होते हैं।
बकवास है ये सब। मैं ये सब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
यस डॉक्टर।
सर, आपको मौत का सही समय जानना चाहते हैं ना?
यस डॉक्टर।
सर, हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार है। ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया हो सकता है।
आई एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट डॉक्टर। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं। देर रात वर्मा निवास पर।
क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ?
सरिता जी, आपने उस दिन मार्केट से कुछ नहीं खरीदा, वापस लौटते वक्त साथ में कुछ नहीं लाई?
मैंने मार्केट से कुछ नहीं खरीदा।
आपके पास चाबी भी थी, आप खुद भी खोलकर चेक कर सकती थी ना?
जी, घर से बहुत धुआं निकल रहा था, मैं बहुत डर गई थी।
अभिलाषा मैडम को आपने 4:30 बजे ट्यूशन फी दी। 1-1.5 घंटे तक आप मार्केट में फालतू भटकती रही, वहाँ से कुछ खरीद कर नहीं लाई।
मैंने बताया ना सर आपको, मैंने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा।
असल में सरिता जी, आपको बॉडी के जल जाने का वेट करना था।
ये आप क्या कह रहे हैं सर, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं?
आपने अपने ससुर और बेटी का मर्डर किया है, सॉरी सौतेली बेटी का। आपके घर से अभिलाषा मैडम के घर की दूरी महज 20 मिनट की है, लेकिन वापस लौटने में आपको इतना ज्यादा वक्त लगा। अब इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी ना?
ये आप क्या झूठी बातें बना रहे हैं मेरे खिलाफ?
झूठी बातें आप बना रही हैं, मनगढ़ंत कहानी आप सुना रही हैं। आपके ससुर की मौत का असल टाइम है 2:00 बजे। उन दो लोगों के घर आने से काफी पहले, और प्रेरणा की मौत का टाइम है 4 बजे, आपके घर से निकलने से बस थोड़ी देर पहले। और आपने उन मजदूरों को घर से जाने के लिए कहा 1:30 बजे, प्रेरणा के घर आने से काफ़ी पहले, और तब तक आप अपने ससुर का मर्डर कर चुकी थी। हमने ठेकेदार से जब पूछा, मजदूर के सही जाने का समय हमें पता चल गया। जाहिर सी बात है कि आप अपने ससुर के इस फैसले से नाखुश थी कि वो आधी प्रॉपर्टी प्रेरणा के नाम कर रहे थे।
इंस्पेक्टर कामत के द्वारा रखे गए सारे सबूतों के सामने सरिता अपने झूठ पर टिक नहीं सकी।
प्रेरणा मेरी अपनी बच्ची नहीं थी। अपनी बच्ची को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। मैं तो बस अपना बच्चा चाहती थी और वो सब प्रेरणा के नाम किए जा रहे थे। मैंने बहुत तकलीफों के बाद फिर से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की थी। मैं जगदीश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और मेरे ससुर मेरे ख्वाब को मिट्टी में मिलाए जा रहे थे। उस दिन जब दिन के 1:30 बज रहे थे और मजदूर अपना लंच कर रहे थे, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई, वहाँ रखा हथौड़ा उठाकर छुपा लिया। फिर मैंने मजदूरों से कहा कि आज के दिन वो ज़्यादा ठोका पीटी ना करें, मेरे ससुर आराम कर रहे हैं। मैंने मजदूरों को पूरी दिहाड़ी देकर भेज दिया। उनके जाते ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई, जो कि मेरी नींद उड़ाकर चैन से खर्राटे भरकर सो रहे थे। गुस्से से मैं पागल हो रही थी। मैंने हथौड़े का भरपूर वार किया और एक ही वार में उनका काम तमाम हो गया। घंटे बाद प्रेरणा आई। मैंने उसे बाऊजी के कमरे में जाने से यह कहकर रोका, बाऊजी आराम कर रहे हैं, पर वो नहीं मानी। फिर मैंने हथौड़े का दूसरा वार किया और उसे भी खत्म कर दिया। मैंने प्रेरणा की बॉडी भी बाबूजी के बगल में रख दी और तकिए में आग लगा दी और अभिलाषा मैम को ट्यूशन फीस देने के बहाने से घर से निकल गई।
वाह, चाल तो आपने खूब चली, पर आपकी किस्मत आपको दगा दे गई। कमरे में आग फैली ही नहीं, केवल तकिया ही जला। तुम्हारे पति जगदीश को मालूम था इस बारे में?
नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था।
दयाल, अरेस्टर, ये न तो माँ है न ही किसी की बीबी, ये बस एक कातिल है, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। ये दोनों मर्डर इसने केवल अपने स्वार्थ के लिए किया है। अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में। कामत सर, आपको सरिता जी पर शक कब हुआ? दयाल, किसी के मन में छुपे स्वार्थ को समझना आसान नहीं होता। यही स्वार्थ जब हद से ज़्यादा दिमाग पर हावी होता है तो मनुष्य और असुर का अंतर मिट जाता है। तुम्हें याद होगा दयाल, सरिता जी हर काम का सही वक्त बता रही थी, जैसे कि मजदूर कब गए, वो दो लोग कब कुलभूषण जी से मिलने आए, जो दरअसल कभी आए ही नहीं। चाबी होने के बाद भी पड़ोसी से मदद मांगना, ये सारी बातें शक पैदा कर रही थी कि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है उसमें झोल है, और बाकी की कसर डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी। एनीवे दयाल, केस इज क्लोज नाउ।
अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी स्वार्थ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।